मन ही हमारे को बार बार एक शरीर में दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कारण है। एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जाते हैं, उसका मुख्य कारण मन है। तो 15वें अध्याय में ये बात स्पष्ट की गई है। 15वें अध्याय का नाम भगवद गीता का है पुरुषोत्तम योग। पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, जैसे जगन्नाथपुरी को कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि भगवान जगन्नाथ वहां है, तो वो क्षेत्र पूरे का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। भगवान राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम जिन्होंने मर्यादा स्थापन की। श्री कृष्ण को कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम, वो प्रेम का जो आदान प्रदान भक्तों के संग है उसमें पुरुषोत्तम। सो पुरुष उत्तम योग मतलब भगवान जो पुरुषोत्तम है उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं, 5-5 श्लोकों के 4 विभाग हैं। पहले 5 श्लोकों में संसार का रूप दिखाया गया है, संसार के बंधन का कारण बताया गया है और उसके छूटने का साधन बताया है। दूसरे 5 श्लोकों में एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाया जाता है उसका कारण बताया, और तीसरे 5 श्लोकों में भगवान इस दुनिया में कैसे देखा जाता है ये बताया गया है, और अंतिम 5 श्लोकों में क्षर और अक्षर जीव क्या होता है और पुरुषोत्तम कौन है ये बताया गया है। तो 4 5-5 श्लोकों के विभाग हैं। तो पहले 5 श्लोकों में क्या है, ये भौतिक जगत कैसा है, ऊर्ध्व मूल अधश्चाखम अश्वतम प्राहु अव्ययम्। ऊर्ध्व मूल, ये संसार ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है, मूल ऊपर है। भाई जड़ कहां से संसार किसने पैदा किया, ब्रह्मा जी ने। संसार कहां से निकला, ब्रह्मा से निकला। तो ब्रह्मा कहां से निकला, भगवान विष्णु की नाभि से निकला। तो मूल कहां है, मूल तो भगवान है। तो ऊर्ध्व मूल ऊपर है, अर्ध शाखाएं नीचे है। ये शाखाएं नीचे है, ऊपर के लोक नीचे के लोक, ये बहुत सारे लोक है, 14 भुवन है, पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक 14 भुवन है, ये उस वृक्ष की शाखा है। ऊर्ध्व मूल अध शाखा अश्वत्थ, अश्वत्थ का वैसे अर्थ होता है पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़, लेकिन अश्वत्थ का संस्कृत में अर्थ है जो आज है कल नहीं रहेगा। अश्वत्थ आज है कल नहीं रहेगा, ये संसार आज है कल नहीं रहेंगे, आज हमें कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन है कैसा, अव्यय, ये अविनाशी है। क्यों अविनाशी है, क्योंकि भगवान से निकलता है, भगवान अविनाशी है तो उससे निकली हुई चीज भी अविनाशी, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिखता है, थोड़ी देर के बाद। तो ये इसमें ये वृक्ष कैसा है, वेदा छंदांसी दस्य प्रणामी, अरे इसके ऊपर वेद के मंत्र नहीं है, पत्तों की तरह ये सुंदर नहीं हो तो बड़ा भयानक लगता है संसार। इसका अर्थ ये है, भाई कोई सर्दियों में आपने देखा है पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं फिर पेड़ अच्छे लगते हैं क्या, नहीं लगते ना। तो इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के ऊपर लगे हुए वेदों के जो ऋचाएं हैं वो पत्ते हैं, इसलिए ये सुंदर लगता है। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में जो शास्त्र के नियम से के अनुसार रहता है तो सुंदर लगता है, नहीं तो वृक्ष की तरह नंगा ही रह जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म के शास्त्र को, क्योंकि इस श्लोक के भी अंतिम में आएगा, ये आखिरी श्लोक में शास्त्र, शास्त्र इदम उक्तम मया न गहिता भूमा, शास्त्र, ये शास्त्र है। शास्त्र शब्द और शस्त्र शब्द दोनों एक ही है, दोनों का मतलब है अनुशासन। भाई पुलिस के हाथ में शस्त्र क्यों होता है, हाँ बंदूक क्यों होती है, मारने के लिए नहीं, सबको कानून में रखने के लिए, नियम में रखने के लिए। ऐसे शास्त्र भी हमको नियम में रखने के लिए, शास्त्र का अर्थ है संयम में रखना, शास्त्र संयम में रखने के लिए है। और शिष्य भी उसी से निकलता है, उसका मतलब अंग्रेजी में डिसाइपल, जिसको डिसिप्लिन में रखा जाए। तो अभी जो बात हो रही थी डिसिप्लिन की हो रही थी, मन और इंद्रियों को कैसे संयम में रखा जाए। तो ये संयम जो है ये तो केवल धर्म के शास्त्र के नियमों से होता है। जब तक आदमी जैसे कानून कोई नहीं कोई कानून के ऊपर नहीं चलेगा तो विद्रोह हो जाएगा, ऐसे धर्म के ऊपर नहीं चलेगा तो आदमी पशु हो जाएगा। आहार निद्रा भय मैं पुण्य पशु भी समाना, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये तो पशु भी कर रहे हैं, तो आदमी में और पशु में अंतर क्या है? धर्म अधिको विशेष, ये धर्म है जो विशेष है वो अधिक है, जो मानव को पशु से ऊपर उठा लेता है। और धर्म क्या है? धर्मार्थ साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म केवल भगवान देते हैं। और यही तो भगवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है, भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता। तो भगवान का आना ही केवल धर्म की शिक्षा देने के लिए है। तो धर्म के ऊपर चलना मतलब भगवान के कानून का पालन करना। तो ये कैसा वृक्ष है? इसके अंदर गुण प्रवाला विषय प्रवाह, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, विषय का मतलब ये संसार के अंदर विषयों के भोग सबको पकड़ के बैठे हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष के भूल भलैया में सब ऐसे अटक गए हैं कि बिल्कुल उलझे हुए हैं। ऊर्ध्व मूल अधशाक अश्वतम प्राहु अनुसंधान यम वेद च वेद, जो इसको जान ले संसार के असली रूप को वो वेद को जानता है। न रूपम अस्तित्व लभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अश्वतम मैनम स्वरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा। ऐसा वृक्ष दुनिया में दिखाई नहीं देता है, किसी उल्टा वृक्ष तो कहीं भी नहीं है। अगर ऐसा देखना है तो केवल नदी के किनारे जाके देखो, वृक्ष उल्टा हुआ दिखता है। एक बच्चे ड्रामा करके कभी दिखाते हैं, आम का पेड़ नदी के किनारे पे है और आदमी नदी में खड़ा हुआ है, आम की परछाई पड़ रही है तो समझता है कि आम नदी में है और नदी में गोता खा के आम को पकड़ते, आम तो होता नहीं है, डूबता है, फिर आम को पकड़ता है, फिर डूबता है, तो आम तो हाथ आता नहीं, तो आम नीचे तो है ही नहीं। तो ऊपर खड़ा हुआ आदमी कहता है आम उधर नहीं है, आप देखो ऊपर है, ये जो दिख रहा है छाया है। असल में ये संसार कैसे है, कभी आपने देखा है बड़े बड़े आईने लगे होते हैं एक दुकान, हम फल के दुकान पे गए तो फल के एक बड़े आईने के सामने फल पड़ा है, जितना फल नीचे है आईने में उतना ही और दिख रहा है। तो जो आईने में फल दिख रहा है उसको खा नहीं सकते, लेकिन असली फल है कहीं, लेकिन आईने में दिखता है वो असली नहीं है। तो असल में इस दुनिया में सब कुछ आईने की तरह परछाई है, असली नहीं है, असली भगवान के धाम में है, वो उसकी परछाई इस दुनिया में पड़ रही है और उसको हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक किसी के हाथ में आया ही नहीं है, किसी के हाथ में ये दुनिया आई है क्या? दुनिया की संसार किसी के हाथ में आया है? संसार कहते ही उसको जो सरक जाए, आप खड़े हो वहां से थोड़ा आगे चला जाएगा, आप भी आगे जाओ और वो आगे चला जाएगा, कभी हाथ ही नहीं आएगा। संसार का अर्थ है सरकता रहे, कभी एक जगह नहीं रहे, परिवर्तनशील संसार का नियम है। तो संसार कभी हाथ आने वाला नहीं, चिड़िया है ही नहीं, असली तो वहां चीज है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये क्या है? उसका प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है दुनिया में। इसलिए जिसको भी हम असल में भगवान के धाम में प्रेम है, उसका बिगड़ा हुआ रूप संसार में काम है, वही प्रेम बिगड़ के काम हो गया है। तो ये संसार तो इसमें क्या करें फिर? तो इसे असली चीज है ही नहीं, तो बोला असली चीज लेनी है तो क्या करो? तो फिर आप इसको असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्वा, जरा दृढ़ता के साथ इस माया के जाल को काट दो। कौन से हथियार से काटे? अस्त्र कौन सा? असंग शस्त्रेण, असंगता का अस्त्र। असंगता का अस्त्र का मतलब क्या है? असंग, हम दुनिया में सब फंसे किससे हैं? संग से। असंग का मतलब है बुराई को छोड़ दो, अच्छाई की ओर चले जाओ। असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा न तो भा, उसके बाद आएगा तो फिर कहां जाए? इस संसार से निकले तो कहां जाए? पदम अव्य ऊपर, इस दुनिया को कि संसार को छोड़ के आप असली दुनिया में जहां का ये प्रतिबिंब है वहां जाने के लिए प्रयास करो, वहां जाने का प्रयास करो जहां असली चीज है। ये उसकी परछाई है। न रूपम से तथो उपलब्ध थे नाम तो चादर संप्रतिष्ठा अश्वतम वायनम सूर्य असंग शरण तत्व पदम तत्परिमार्गितम यस्मिन गतान निवर्तन से भूय तमेव चार्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रसृति प्रवृत्ता प्रसन्नता पुराण। तो ऐसे पद को प्राप्त करो जहां से फिर वापस कभी नहीं आना पड़े। इस दुनिया में तो वापस आना जाना पड़ता है, शरीर का तो जन्म मरण होता है, शरीर तो जन्म लेता है फिर मरता है, आत्मा का आना जाना रहता है, कर्म के बंधन के कारण आत्मा का बार बार जन्म होता है संसार में। तो ये संसार से उस पद के ऊपर जाओ जहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता। यद गतवान निवर्तनते जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता वहां जाओ, वो जाने का रास्ता क्या है? तब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वैव मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत। पदम अव्ययम अविनाशी पद को प्राप्त करना, अक्षर पद को प्राप्त करना, अविनाशी अक्षर इन सब का अर्थ एक ही है। उस पद को प्राप्त कैसे किया जाए, उसका साधन क्या है? निर्माण अहंकार को छोड़ देना। न मान मत करो इस दुनिया में, मेरा मेरा करके मत मरो। इस दुनिया को धरती को पूरी दुनिया समझता है मेरी है, हर एक ने चार लकीरें लगा दी और कहता है ये मेरा ये तेरा ये मेरा। अरे ये धरती है किसकी? शास्त्र कहता है पृथ्वी स्व धृता लोका विष्णु पत्नी, ये भगवान की भू देवी भगवान की पत्नी है और दूसरी भगवान की पत्नी है श्री देवी लक्ष्मी। चरण और अचल, चरण लक्ष्मी देवी और अचल पृथ्वी देवी, दोनों को विष्णु पत्नी शास्त्र ने माना है, दोनों को विष्णु पत्नी कहते। और दुनिया सारे इसको पकड़ के उसका पति बनने का प्रयास करे, ये सबसे बड़ा अहंकार दुनिया है। दुनिया ने इस भगवान की भार्या को अपने भोग का साधन बनाने का मूर्ख का किया है, ये बड़ा अहंकार और मान है। और हर एक इस दुनिया में समझता है कि मेरे बगैर दुनिया चलेगी नहीं। जितने कब्रिस्तान में जितने मखाने में मरे हुए ना, ये समझा सब ये कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया चलेगी नहीं, वो चले गए, अभी भी चल रही है, अब उनको बताए कौन जाके। सभी ऐसे समझते थे कि हम ही हैं तब दुनिया चल रही। तो ये अहंकार जो इस दुनिया में जीव का शरीर के बंधन में आने का कारण झूठा अहंकार है, फाल्स ईगो है। ये गांठ है जो पड़ जाती है शरीर और आत्मा के बीच में। आपने देखा है ट्रैक्टर और ट्राली को देखा है, भार कौन खींचता है? ट्रैक्टर। भार किसके ऊपर होता है? ट्राली के। और ट्राली ये समझती है कि मैं ही सब कुछ उठा रही हूं, लेकिन दोनों को पकड़ने के लिए एक छोटा सा हुक होता है, वो हुक निकाल दो तो ट्राली इधर ट्रैक्टर आता है, भार उठाने की जरूरत नहीं। तो असल में आत्मा तो शक्ति है ट्रैक्टर की तरह, अहंकार के उस आंकड़े ने उस हुक ने इस शरीर के साथ अपने आप को बांध दिया है और शरीर सारी दुनिया का भार उठाने का उठा प्रयास कर रहा है, ऐसे मुक्त में भार उठा रहा है, बस केवल इसको खोल दो आप आजाद हो गए। लेकिन वो अहंकार की गांठ इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, खुलती नहीं है। इसलिए इस अहंकार को छिंजंती ग्रंथि, इस ग्रंथि को काटना पड़ेगा, ये ग्रंथि कटनी पड़ेगी। इस ग्रंथि तब कटेगी जब आदमी सत्व गुण से ऊपर उठेगा, तीनों गुणों से ऊपर उठेगा, मैं करना छोड़ दे और तेरा ही भगवान सब कुछ तेरा ही, ये भाव आ जाए मैं को छोड़ के तेरा ही तेरा करने लगे, तब ग्रंथि टूटती है। तो एक झूठा अहंकार है तो कोई सच्चा अहंकार होगा, फॉल्स ईगो है तो कोई ट्रू ईगो भी होगा ना। ट्रू ईगो क्या है? हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, ये सच्चा ईगो है। तो अब हम भगवान के दास हैं, ये हमारा भाव हो जाए तो हमारे बंधन कट गए, हमारा मालिक भगवान तो हमारी चिंता दूर। ये केवल इतना सोच को बदलना है, अब हम मालिक हैं और फिर भगवान मालिक है और हम सब सेवक हैं। एक बॉटम लाइन ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जब तक भोग करने की इच्छा होगी तब तक बंधे रहेंगे, जब सेवा का भाव आ गया तो मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। ये बॉटम लाइन है, क्योंकि हमारा स्वरूप सेवा है, हमारा सही ईगो है सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये भगवान का अपने शब्द है कि हमारा सेवा काम है। और हम जब भोग की भावना करते हैं तो भगवान से कंपटीशन करते हैं, भोगता कौन है। एक प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, बहुत बड़े धनी सेठ का बेटा उनसे मिलने आया, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो कि भगवान बनना चाहते हो। क्योंकि एक प्रचार ऐसा गलत दुनिया में चलता है कि आप भगवान बन सकते हैं, तो अब हमको क्या हो गया, बोला अब हम तुम्हें अज्ञान हो गया, तो क्या भगवान से अज्ञान ज्यादा शक्तिशाली है कि भगवान को अज्ञान ढक सकता है क्या। अगर भगवान है तो फिर अज्ञान कैसे होगा, भगवान को अज्ञान नहीं हो सकता। तो विशेष एक ऐसी उस वक्त अमेरिका में प्रचार कर रहा था कि आओ तुम भगवान बन जाओ, थोड़ा योग का अभ्यास करो भगवान बन जाओगे। तो ये जब प्रभुपाद ने उनसे पूछा तो बेचारे उसने उत्तर नहीं दिया, चुप करके बैठा। लेकिन वो कहता है कि महाराज ने मेरे आंखों के द्वारा मेरे घर में मेरे शीशे सेंक के ऊपर शीशे के ऊपर लिखा हुआ देखा, जिसमें मैंने लिखा था आई एम गॉड। मतलब वो उस भक्त ने अपने घर में लिख के रखा था मैं भगवान हूं। तो चुप करके बैठे तो स्वयं प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं, अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो भगवान तुम्हें बुद्धि देंगे जिससे तुम भगवान को पा सकते हो। अगर तुम भगवान बनना चाहते हो तो भगवान अपना एक कॉम्पिटेटर कायल के लिए बनाएगा, वाई शुड ही हैव सम कॉम्पिटेटर। अगर सेवा करना चाहते हो तो बुद्धि देगा। तो असल में भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। आप देखो पुराने जितने भी नाम है आपके माता पिताओं ने रखे हैं तो रखा होगा धर्मदास, गोपाल दास, राम दास, तो दास पीछे क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। और सारे गुरु ग्रंथ में देखेंगे तो गुरु नानक साहब ने लिखा है नानक ठाकुर दास है, दास ही शब्द से सारे भगवान का मैं नित्य दास हूँ ये लिखा हुआ है, दास दास अनुदास, ये हमारी सही पहचान। तो निर्माण का मतलब है अहंकार मत करो कि दुनिया तुम्हारी है और तुम्हारे बगैर ये दुनिया चलेगी नहीं, ये मूर्खता छोड़ दो। इसलिए अमूढ़ शब्द लिखा है, जो मूर्ख नहीं है, ये भगवान की बहुत मीठी भाषा है, जो मूर्ख नहीं है इसका मतलब प्राय सारे ही मूर्ख है जो सब को अपना मान रहे हैं, लेकिन मीठी भाषा में बोला जो मूर्ख नहीं है। निर्माण मोहा अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, दुनिया में किसी चीज के ऊपर अहंकार मत। क्या है आपके पास, आपकी शक्ति है क्या। एक महात्मा किसी के घर में गए, बड़ा सेठ था, सेठ ने कहा कि देखिए महाराज ये लाइन सारी दुकानों की है ना, ये आपकी कृपा से हमारी है, जितनी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हैं ये सब हमारी है, ये फैक्ट्रियों के धुएं निकल रहे ये सब हमारी है। तब महाराज ने देखा इसको अपने सारे वैभव का अहंकार हो गया है, तो महाराज ने धरती का गोला जो गोल होता है वो उसके सामने रखा, बोला तुम्हारा देश कहाँ है इसमें जरा दिखाओ। तो उस बड़े धरती के गोले में उसके देश तो एक चींटी जितना देश का जगह था। बोला इस देश में महाराज आपका सेठ जी दुकान घर मकान कहाँ है, बोला उसका तो निशान भी नहीं है। तो बोला दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारा ये जो तुम बड़ा बता रहे हो ये दुनिया के सामने कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है दुनिया के सामने। हम अपने आप को समझते हैं कि बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है हमारा। तो ये अहंकार छोड़ देना चाहिए, झूठा है। निर्माण मोह, मोह दूसरा एक मान छोड़ो, दूसरा मोह छोड़ो। मोह का मतलब क्या है, झूठे बंधनों में फंसे हुए हैं। मोह किससे हमने मोह करके रखा है, जो चीज नाशवंत है उससे मोह करके रखा है। शरीर से कितना मोह है हमारा, और एक दिन ये शरीर छूटेगा हमको मालूम है। और जड़ पदार्थों के साथ इतना मोह है, अपने घर से मोह, अपनी गाड़ी से मोह, ये तो ये जड़ पदार्थों से मोह करके रखा है। और फिर संबंधों के बंधन में फंसे हुए हैं, ये सब मोह जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कहते हैं भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि हमारा संसार में इतना मोह हो गया है, पुत्र परिवार का मोह। भगवान कहते तुम्हें मुझसे ही रिश्ते बना लो, मुझे ही अपना बेटा बना लो, मुझे ही अपना सखा बना लो, मुझे ही अपना प्रेमी बना लो, तो तेरा मोह खत्म हो गया, तुम्हारा सच्चा प्रेम शुरू हो गया, तेरा बंधन ही छूट गया। तो इस मोह से छुड़ाने के लिए ही भगवान विशेष रूप से अवतार लेते हैं, ताकि वही संबंध जो हमारे बंधन का कारण है वो भगवान के साथ हम जोड़ दें। इसलिए आप देखेंगे कि भारत संस्कृति में संतों की इतनी कृपा है कि हर घर में एक छोटा सा गोपाल बैठा है। अब माँ कहती है बेटा बड़ा होके तो पत्नी के साथ चला जाएगा, ये तो मेरा घर छोड़ेगा, अब मेरा ये लाला तो घर नहीं छोड़ेगा ना कम से कम, तो उसका ये विश्वास कि ये मेरा बेटा मेरे पास है, और उस बेटे के प्रति उसकी ऐसी श्रद्धा है कि आजीवन उस बेटे की सेवा में वो भगवान को बेटा बना लिया, कितना बड़ा भाग्यशाली होगी। क्यों, ये संसार के बेटे तो एकदम चले जाते हैं, ये तो सच्चा झूठ तो नहीं है। हम तो आधुनिक भाषा में कहते हैं कि दिल धारे बड़े से बड़े डाकू यही है, सारी जिंदगी की कमाई शादी के समय उड़ा के चले गए, और बाबा घर में बैठा माता ऐसे खोजना रहता है कि कब काका सब ले गया है? घर बनाने वाले के घर के बाहर काका बुढ़ापे में बैठता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो मोह संसार में मोह बंधन का कारण है, तो मोह कहां करना चाहिए, भगवान से मोह कर दो, मोह नहीं खत्म होगा, लेकिन मोह का विषय बदल दो। मोह सत्संग में हो जाए, रोज सत्संग में जाने का अगर मोह हो जाए तो बंधन से मुक्त हो गए, संतों के संग का मोह हो जाए तो बंधन से मुक्त हो गए, भगवान के मिलने का अगर मोह हो जाए तो बंधन से मुक्त हो गए। निर्माण मोह जित संग दोषा, दोषों के ऊपर जित संग दोषा, जो दोष का संग है उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। कौन सा दोष का संग है, तमोगुण रजोगुण, ये गुण है, इन्होंने हमको गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, जिसने हमको संसार में बांध के रखा है, तो जो तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठेंगे सतोगुण में आएंगे, तब आध्यात्मिकता के मार्ग में चलना शुरू कर सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण, पूरी संसार रजोगुण और तमोगुण से भरी हुई। रजोगुण का मतलब लोभ लालच, दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ना, और तमोगुण का मतलब आलसी पड़ा है, कुछ करने की इच्छा नहीं। तमोगुण और रजोगुण से ये संसार भरा हुआ है। इस संसार में दो ही दल हैं, एक कैपिटलिस्ट एक कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट जो है वो रजोगुण की मूर्ति है, और कम्युनिस्ट है वो तमोगुण की मूर्ति है। एक ये दोनों दुनिया इन दोनों से भरी हुई है, और कोई सतोगुण का दिमाग है ही नहीं। तो ये सत्संग हमको सतोगुण में लाने के लिए है। सतोगुण में सतो संजायते ज्ञानम, सतोगुण में सच्चा ज्ञान होता है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, शरीर सदा नहीं रहेगा, आत्मा भगवान का अंश है, शरीर यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये सच्चा ज्ञान समझ में कब आता है, जब आदमी सतोगुण है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये कैसे हो सकता है, मोह कैसे छूटे, अहंकार कैसे जाए, बुरे संग कैसे छूटे, एक ही रास्ता है अध्यात्म नित्या। नित्य मतलब रोज प्रतिदिन, अध्यात्म मतलब अपना अध्ययन करो, आत्मा का चिंतन करो। अगर रोज आपके जीवन में साधन है, रोज का भगवान का स्मरण है, रोज का भगवान का श्रवण है, नित्य नित्य हो गया। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्य, अध्यात्मिकता नित्य नहीं, नित्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हफ्ते में एक दिन होनी है, कि 15 दिन में एक दिन, या महीने में, नहीं, नित्य कोई बात नहीं, यहाँ नित्य नहीं आ सकते, अपने घर में साधन नित्य करना चाहिए। और रोज का 3 बार अगर भोजन खाने का नियम है, नाश्ता दोपहर का भोजन और रात का भोजन करते हैं, तो त्रिकाल संध्या विभेदने हमारे लिए आत्मा के उद्धार के लिए अनिवार्य की है। त्रिकाल संध्या, संध्या का मतलब असल में एक संध्या का मतलब है दो को जोड़ना, जैसे संध्या लगाना, रात और दिन को जोड़ना। सुबह सवेरे तारे आसमान से चले गए, सूरज उगा नहीं है, रात गई दिन नहीं हुआ, उसको कहते हैं प्रातः काल संध्या, ब्रह्म मुहूर्त। वो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो असल में आत्मा के चिंतन का समय है। वो समय ब्रह्म मुहूर्त का कोई उठ के थोड़ा भी आध्यात्मिक चिंतन करेगा तो ये प्रातः काल संध्या कहलाती है। सायंकाल को सूर्य अस्त हो गया, अभी तक तारे नहीं निकले हैं, इसको सायंकाल की संध्या कहते हैं। हर मंदिर में उस समय घंटी बजती है और आरती होती है, उसका नाम ही संध्या आरती है। तो ये संध्या का, और ये संध्या इसको इसलिए कहते हैं, हमारे को इस समय बैठ के हमारे शरीर की आत्मा के साथ जो संधि हो गई है अहंकार से, उसको खोलना चाहिए। ये समय उसको खोलने का है। और तीसरी संध्या दोपहर को 12 बजे कहते हैं, मध्यान्ह काल संध्या। इन तीन टाइम पे 10-10 मिनट भी निकाल के जो भी आपको आध्यात्मिक साधन शिक्षा मिली है, कोई नाम सुमरण मिला है, उस नाम का सुमरण शांत, थोड़ी देर की 10 मिनट शांत हो जाओ, सब जगह से अपने मन को हटा दो और बैठ के आत्म चिंतन में लग जाओ। नाम सुमरण 3 बार, अगर 3 बार भोजन खाते हो तो 3 बार आत्मा के भोजन की भी जरूरत है। शरीर को भोजन अन्न है, अन्न का कोष अन्न कोष, एक तो आज मन कोष की बात हो रही थी, तो 5 गोष कोष इस शरीर में है। ये बाहर का कोष, इसको बोलते हैं अन्नमय कोष, इसके अंदर है मनोमय कोष, फिर है ज्ञानमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष। ज्ञानमय कोष बुद्धि से, विज्ञानमय कोष अनुभव का कोष आत्मा के स्तर पे, और फिर परमात्मा की अनुभूति की बात है। तो ये इसको शरीर के, ये शरीर हमारा ऐसे बना हुआ ही ऐसे है, तो दूसरे स्तर पे भी आना चाहिए। अध्यात्म नित्य नित्य रोज प्रतिदिन थोड़ा समय आत्मा के चिंतन के लिए लगाना चाहिए, भगवान के स्मरण के लिए लगाना चाहिए। जो भी भगवान का नाम आपको, भगवान ने इतने अपने नाम रखे हैं कि कोई भी नाम, सब नामों में भगवान ने अपनी शक्ति भर दी, सभी नाम भगवान के, भगवान से अभिन्न है। हम पानी पानी कहेंगे तो पानी हमारे पास नहीं आएगा, प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं जानता है कि हम उसको बुला रहे हैं, पानी जड़ है। लेकिन भगवान का नाम लेंगे तो भगवान जड़ नहीं है, वो मानते हो तो, वो तो चेतन का चेतन है, सारे चेतनों का आदि चेतन है, तो वो तो जानते हैं कि हम उसको बुला रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, पानी और पानी में अंतर है। पानी पानी करने से पानी नहीं आएगा, लेकिन भगवान भगवान करने से भगवान आ जाएगा, जब हमारी बुलाने की श्रद्धा सच्ची हो जाएगी। एक मां रसोई में भोजन बना रही थी, घी पूरियों के लिए घी चढ़ा था, हाथ आटे में थे, दूध खीर बनाने के लिए चढ़ा के रखा था माँ ने, और बहुत रसोई में व्यस्त थी। बच्चा जोर से रोया, अचानक बच्चा रोया, माँ दौड़ती हुई चली गई, हाथ आटे वाला घी चढ़ा, छोड़ दिया दूध, बच्चे को गोद में उठाया, बच्चे को चुप कराया, लड्डू दे दिया, बच्चा चुप हो गया, आगे काम शुरू किया। 5-7 दिन के बाद माँ तो कोई काम नहीं था, बाहर बैठी थी, लान में बैठी थी, सर्दी में स्वेटर बुन रही थी, मूंगफली खा रही थी। बच्चा बदस बार रोया, माँ ने देखा भी नहीं, बच्चा रो रो के थक गया, गला थका, पीछे से आगे पकड़ा, बोला माँ माँ उस दिन एक बार रोया था, आप भागती हुई आई थी, सब काम छोड़े, अब 10 मिनट से रो रहा हूँ, आप आ नहीं रही है। माँ ने कहा बेटा उस दिन तुम मेरे लिए रोया था, आज तुम लड्डू के लिए रो रहा है। उस दिन जो तुम्हें लड्डू दिया था ना, तो आज तुम्हारा रोना लड्डू के लिए। तो भगवान भी जानता है कि हम राम राम करते हैं भगवान के लिए कि भगवान से कुछ दाम मांगने के लिए। लड्डू के लिए जब बोलते हैं तब भगवान को सुनने में थोड़ी देर लगती है, भगवान के लिए जब बोलते हैं तो भगवान भागते हुए आते हैं। तो हमारे बोलने में भी बहुत बड़ा अंतर होता है कि हम भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं। प्रभुता को भजे सबको, प्रभु को भजे न कोय। भगवान से मिलने वाली चीजें तो सबको चाहिए, लेकिन भगवान किसी को चाहिए नहीं। कि भगवान आ गया तो फिर तो हमारे को सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। एक ऐसा मंदिर के भाग ठाकुर जी के पोशाक बनाने वाला, जो बागा बनाते हैं, पोशाक बनाते हैं, जो ड्रेस बनाते हैं, वो इंग्लैंड में, उसको गीता दिया कि आप गीता ले लो। गीता को उठा के सर के ऊपर रखा, तो बोला मैं लूंगा नहीं। बोला क्यों? बोला ये लूंगा तो मेरा सब काम चौपट हो जाएगा, मैं आपके मंदिर में आके बैठ जाऊंगा, इसलिए ये मैं लूंगा नहीं, क्योंकि लेने के बाद तो मैं भगवान की सेवा में लग जाऊंगा, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दुनिया असल में भगवान से भागते हैं कि भगवान कहीं पकड़ न ले। तो अभी ये तो कैसे हम नित्य अध्यात्म नित्य विनिवर्त कामाह। निवृत्त का मतलब छूट गए, विनिवर्त मतलब विशेष रूप से काम से मुक्त हो गए। काम का एक अर्थ होता है इच्छा, और काम का एक अर्थ तो काम ही है, तो काम के भाव से मुक्त होना, इच्छाओं से रहित होना। ये आदमी कैसे होगा, जब आध्यात्मिक भगवान की इच्छा हो जाएगी तो दुनिया की इच्छा करने की जरूरत क्या है। भगवान की इच्छा करने के बाद दुनिया की किसी चीज की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुनिया भगवान से बाहर तो है नहीं, उसी के अंदर सब कुछ आ गई ना। तो राजा ने जब जन्मदिन पे अपने कहा कि किसी चीज के ऊपर हाथ रखो और तुम्हारी ले जाओ, तो हर एक आदमी तो गाय ले लिया, किसी ने गाय सोना ले लिया, किसी ने घर ले लिया, लेकिन बुढ़िया मैया ने कहा कि महाराज ऐसे क्यों कर रहे हैं। बोला आज उनका जन्मदिन है, उस हर चीज के ऊपर हाथ रखो और ले जाओ। माने बोला महाराज से मिलाओ, महाराज के पास गए, बोला महाराज ये क्या। बोला जिसको जो चाहिए हाथ रखो सर पे ले जाओ। बोला क्यों। बोला आज मेरा जन्मदिन है। बोला फिर ठीक है, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं मुझे मिलेगा। बोला हाँ क्यों नहीं मिलेगा, देखो वो ले जा रहे हैं। माने हाथ लंबा करके राजा के ऊपर रख दिया। बोला अब मैं तुमको क्यों, तो अब राजमाता होगी, उधर ही बैठ गई तो राज की मालकिन हो गई। अब बताइए कि राजा के ऊपर सर रखना, हाथ रखना ठीक है कि चीजों के ऊपर ठीक ना। तो भगवान के ऊपर ही हाथ रख लो ना, भगवान को ही अपना बना दो तो सब कुछ आपका हो जाएगा। किसी को यही असल में गुरु का धन सबसे बड़ा क्या है, उन्होंने भगवान को अपना प्रेमी बना के रखा जाए तो भगवान उनके संग में। उनका धन क्या है, गोविंद जिनका धन है उनको किस चीज की परवाह नहीं है, तो मालिक सब मालिक के खजाने की चाबी ही उनके पास होती है। देखिए काम करते हैं, यहाँ मजदूर काम करता है 100 दिनार मिलता है, उसके ऊपर सुपरवाइजर को 5,000 दिनार मिलता है, फिर उसके ऊपर मैनेजर को 1,000 मिलता है, और मैनेजर के ऊपर एमडी है उसको 2,000-5,000 मिलता है, और फिर मालिक आता है वो सारा शाम को ले जाता है, लेकिन घर में मालिक जाता है तो उसकी पत्नी प्रेम से सब निकाल के ले लेती है। बताइए मेहनत करने वाले से घर में सेवा करने वाली को ज्यादा सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, देख लो आप। तो उसको तो सभी जेब से निकाल देती है। तो भगवान के प्रेमी भक्त ऐसे ही है जिनको कुछ करना नहीं है, सब कुछ अपने आप इकट्ठा होके आता है, और भगवान की जेब में हाथ निकालना है सभी कुछ उसके पास है। तो वो तो छेद जाएगा, सब कुछ इकट्ठा करके लेके आएगा, कंपनी का मालिक तो वो है, लेकिन घर में जाएगा तो उसके मालकिन और प्रेमी। तो भगवान से बड़े भगवान के भक्त होते हैं। भगवान ने अपने से ज्यादा महत्व भगवान के भक्तों को दिया हुआ है, वो उसको सब कुछ दे देते हैं। तो विनिवृत्त काम है, जिसको कामना की इच्छा ही खत्म। कैसे इच्छा खत्म हो गई, उनने ऊपर की इच्छा कर ली, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर ली, तो छोटी इच्छा करने की जरूरत क्या है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, क्योंकि भोग की भी इच्छा है, मुक्ति की भी इच्छा है, सिद्धि की भी इच्छा है। इन इच्छाओं से जो मुक्त हो जाए, भगवान की भक्ति की इच्छा हो जाए, तो सदा के लिए शामिल। विनिवृत्त कामा द्वैन्द्वैर मुक्ता सुख दुख संगई, वो फिर सुख और दुख से ऊपर उठ गया। अरे सुख और दुख तो इस संसार में किसको नहीं आते हैं, कौन है जिसने दुख नहीं देखा है। संसार ये शरीर का घर में कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, ये तो चला जाएगा, हमेशा थोड़ी रहने वाला है। वो तो अपने सदा रहने वाले स्थिति में स्थिर हो जाता है। अमूढ़ गच्छन्ति पद, तब वो परम पद को प्राप्त करता है। ये सिर्फ शरणागति का साधन है, ये रास्ता शरणागति का है। भगवान की शरणागति लेंगे तो ये सब अच्छे गुण आ जाएंगे। इसके बाद के श्लोकों में भगवान कहते हैं, अगर पदम परम पद कौन सा है जिसको प्राप्त करोगे, बोला मेरा धाम। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे धाम में न सूर्य की जरूरत है न चांद की जरूरत है, मेरे से निकलने वाले प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें लीन होने के लिए ज्ञानी लालायत रहते हैं, वो मेरा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। और फिर भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है तो तुम भी तो मेरे हो, मेरा धाम है तो तुमको वहां आने का अधिकार है। जन्मगे अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, अरे आप सब जीव मेरे सनातन अंश हो, मेरे धाम में आ जाओ। फिर भगवान जीवों की ओर देखता है, कहता आपको भूत लग गया है, अब जीव हो लेकिन भूत लगा हुआ है। कौन सा भूत, ये शरीर रूपी भूत लगा है। शरीर कहाँ से मिला, प्रकृति ने दिया, मन और 5 इंद्रियां खींच के दुनिया में ले जाती हैं। आत्मा भगवान की ओर, भगवान की सेवा। आपके मन में कभी आत्मा के भाव आएगा तो मंदिर में जाने की इच्छा होगी, सत्संग में जाने की इच्छा होगी, लेकिन मन और इंद्रियां कहेंगे नहीं नहीं चलो संसार का भोग करें। तो ये खींचा तानी जीवन में हमेशा रहती है, आत्मा भगवान की सेवा में लगना चाहता है और शरीर भोग करने के लिए प्रकृति में जाना चाहता है, क्योंकि दो चीजों के हम बने हुए हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद में श्लोकों में शरीर कैसे मन के अंदर इच्छाओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है और भगवान वो इच्छा पूरी करने के लिए दूसरा शरीर देता है जिसमें वो इच्छाएं पूरी कर लो। फिर कहते हैं भगवान को कहाँ से देखना शुरू करें, बस सुबह सूर्य को उगते देखते हो का नहीं, उसका प्रकाश मेरी तरफ से आपके लिए प्रसाद है, सुबह आपको जगाने के लिए सूर्य देव आ जाते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, ये सारा जगत प्रकाशित सूर्य से हो रहा है, वो सूर्य मेरी आंख है, मैं आंख खोलता हूँ तब तुम जागते हो। और फिर जिस धरती के तुम ऊपर रह रहे हो वो धरती गामा विश्याम से भूतानी, धरती के अंदर आप होल करके देखो पानी है कि नहीं, तो डूबती क्यों नहीं है? धरती के चारों ओर समुद्र, धरती के नीचे पानी, फिर भी डूबती क्यों नहीं है? बोला भगवान कहते मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है और इसको अपने जगह पे रखा हुआ है। समुद्र अगर 2 इंच ऊपर उठ जाए, सूरज 2 इंच नीचे आ जाए तो प्रलय हो जाए, 2 इंच केवल बढ़ जाए तो प्रलय हो जाए। हर एक अपनी मर्यादा में किसने रखा हुआ है? भगवान कहते मैंने रखा हुआ है। और फिर कहते ये तो दूर का हो गया, तुम जरा अपने अंदर में देखो, रोज खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? भोजन जो करते हो घर में तो माँ पका देती है, लेकिन अंदर कौन पकाता है? यहाँ से नीचे जाने के बाद तुम्हारा तो उसके ऊपर कोई उसके ऊपर तुम्हारा चलता नहीं है, यू हैव नो कंट्रोल। तो मैं अंदर अहम वैश्वान रो भूतवा प्राणीनाम देहमाशत, मैं तुम्हारे पेट में जटड़ा अग्नि के रूप में बैठा हूँ और सारे भोजन को पकाता हूँ, रस निकाल के तुम्हें पौष्टिक पदार्थ तुम्हारे रक्त में डाल देता हूँ, तुम्हारे को शक्ति मिलती है, कचरा एक थैली में बंद कर देता हूँ, पानी दूसरी थैली में डाल देता हूँ, कितना बड़ा अंदर बैठ के काम करता हूँ, प्राण अपान समायुक्त, कितना खाना है और कितना एक बार पेट भर जाए सामने कुछ भी पड़ा है अंदर नहीं जाएगा, तो बाहर निकालना ये सारा प्राण अपान, अंदर क्या जाएगा निकलेगा क्या, ये सारा बैठ के मैं व्यवस्था करता हूँ। उपप्राणों के द्वारा 10 प्राण शरीर में, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, ये भी कभी खत्म नहीं होते हैं, ये भी आत्मा के साथ जाते रहते हैं जब तक मुक्ति नहीं होती है, भगवत धाम नहीं जाया जाता है। तो इसके बाद कहते हैं ये तो भोजन पकाने की बात हो गई, मैं तो आपके हृदय में बैठा हूँ, आपका मित्र, सर्वस्याहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं आपके हृदय में मैं बैठा हूँ, जन्म में माँ के गर्भ में 2 महीने में पहले हृदय धड़कन शुरू होती है हृदय, और जब तक हम जीवित होते हैं तब तक दिल चलता रहता है और उस दिल में भगवान विराजमान है कि उसको चलाते रहते हैं, एक मिनट भी रेस्ट नहीं करता है। और भगवान दिल में बैठे हुए क्या करते हैं? बोला तुमने पहले कुछ मांगा था, तुम्हें भूल गया है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम्हें ये करना है। हमें तो पुराने जन्म की इच्छाएं भूल गई, लेकिन याद कौन कराता है? मैं स्मृति देता हूँ और कुछ चीजें भुलाने की शक्ति देता हूँ। कौन सी चीजें? इस दुनिया के अंदर कितना बड़ा कोई रिश्तेदार मर जाए, थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं कि नहीं जाते? तो भूलने की शक्ति भगवान नहीं देता तो दुनिया में लोग सब लड़ मरते। ये भूलने की शक्ति की भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अगले जन्म के, भाई पुराने जन्म का कोई कहे कि मेरे 50 लाख रुपए तुम्हारे तरफ थे, उसको याद आ जाए तो दुनिया में तो सब लोग मर के लड़ के मर जाए, कि ये भुलाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। और फिर कहते वैदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवा, वेद मैंने दिए हैं, वेदों का रचयिता मैं हूँ और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। और फिर 5 श्लोकों में कहते हैं दिवो इमो पुरुष लोके क्षर चाक्षर एव च, संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, एक क्षर जीव एक अक्षर जीव। क्षर जीव का मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्कर में कर्म के बंधन में, अक्षर जीव का मतलब नित्य सिद्ध मुक्त जीव है। बोला इतना बताइए कि दुनिया के अंदर जेल में लोग ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है ना, इसका मतलब मुक्त लोग ज्यादा होते हैं, बद्ध लोग कम होते हैं। तो मुक्त लोग बहुत ज्यादा हैं, जिन साधु संत महात्मा हैं ये तो मुक्त लोग हैं, सिर्फ भगवान की इच्छा से इस धरती के ऊपर आते हैं हमारे उद्धार करने के लिए, कर्मों के बंधन से नहीं आते हैं और हम कर्मों के बंधन से आते हैं, दोनों में अंतर है। तो 2 प्रकार के जीव हैं, एक को क्षर कहते हैं एक को अक्षर कहते हैं। क्षर का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में कर्मों के कारण बंधा हुआ, और अक्षर उसको कहते हैं जो करने के बंधन से मुक्त है, नित्य मुक्त जीव है, भगवान के धाम से भगवान की इच्छा से संसार के कल्याण के लिए आता है। छोटा सा उदाहरण, जेल के अंदर बंदी भी होते हैं, जो अपराध करके जेल में डाले जाते हैं, लेकिन जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट भी रहता है, लेकिन वो अपराध करके नहीं जाता है, लेकिन रहता वो भी जेल में, लेकिन जेल का कानून उसके ऊपर नहीं लगता है। तो जो अक्षर जीव है वो इस संसार में आते हैं, लेकिन को कर्मों के कारण नहीं आते हैं, वो इस संसार में इस संसार को ठीक रास्ते से चलाने के लिए आते हैं, जैसे जेल में जेल सुपरिटेंडेंट है। राजा भी जेल में जा सकता है, वो जाएगा तो कुछ लोगों को जेल से निकालने का आदेश भी दे सकता है। ऐसे भगवान भी इस संसार में कभी आता है तो जैसे राजा जेल में जाता है, वो जेल के कानून के अंतर्गत नहीं आता है, अपनी मर्जी से बंदियों के उद्धार के लिए आता है। तो दो प्रकार के जीव अक्षर चाक्षर अक्षर सर्वानी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते। ये सारे भूत जिनको ये भौतिक शरीर मिला है कर्मों से, ये तो सारे भूत है, लेकिन कूटस्थ है जो मुक्त, जो अक्षर जीव है वो कूटस्थ है। कूटस्थ किसको कहते हैं? ये जो सुनार के दुकान पे इरन होता है ना, नीचे इरन, उसको बोलते हैं कूट। उसके ऊपर कितने जेवर बनाए, कितने उनकी शक्लें बदल गई, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा नहीं बदला। तो कूटस्थ उसको कहते हैं कि कितने भी शक्लें बदल जाएं दुनिया की, लेकिन वो कभी नहीं बदलते। इसका मतलब 84 लाख योनियों में वो कभी नहीं जाते, वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते। तो अक्षर पुरुष वैसे ही रहता है जैसे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एरन की तरह होता है। उसके ऊपर कई शक्लें बदली, कई चीजें बनाई, टूटी फूटी, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। फिर इन दोनों से ऊपर एक परमात्मा है, परमात्मा इन दोनों क्षर चाक्षर एक क्षर सर्वानी भूतानी कुटस्तो अक्षर उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मे की उदाहरण। इन दोनों से ऊपर परमात्मा है। तो दो प्रकार के जीव हो गए, मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव को कहते हैं जीव भूत और मुक्त योगी को कहते हैं ब्रह्म भूत। जीव भूत ब्रह्म भूत, ये याद रख लीजिए। ब्रह्म भूत का मतलब मुक्त जीव, ब्रह्म भूत का मतलब मुक्त जीव, और जीव भूत का मतलब बद्ध जीव जिसको शरीर कर्मों के कारण मिला है। इन दोनों से ऊपर परमात्मा है, इन दोनों से ऊपर परमात्मा है। क्षर से अक्षर एक क्षर सर्वानी भूतानी कुटस्थ उत्तम पुरुष है, तो अन्य इनसे अलावा एक और उत्तम पुरुष है परमात्मे की उदा। यह लोकोत्तम आवृत विवर्त्या ईश्वर है, वो इस दुनिया का ईश्वर है, वो इस दुनिया को चलाता है। और फिर उससे भी ऊपर कौन है? तब कहते हैं पुरुषोत्तम उससे ऊपर है। तो ये अंतिम दो श्लोक पढ़ के 15वें अध्याय की पूर्णाहुति करते हैं। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मे की उदाहरण यो लोकोत्तम आवृत यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि चोप अतो अस्मि लोके वेदे च पृथक पुरुषोत्तम। इन सब से ऊपर पुरुषोत्तम भगवान साक्षात स्वयं है। भगवान का साक्षात्कार तीन स्तर पे होता है। भगवान के ज्योति के रूप में ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार, ये ज्ञानियों का लक्ष्य होता है। भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में देखने का साक्षात्कार, ये योगियों के ध्यान का लक्ष्य होता है। और भगवान का पुरुषोत्तम रूप में साक्षात्कार, ये भक्तों का लक्ष्य होता है। तो ब्रह्म परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान इति शब्दते, एक ही अद्वैत सत्य है जिसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहा जाता है। भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं, परमात्मा सबके हृदय में रहने वाला भगवान का एक अंश है, एक एक एक्सपेंशन है, एक विस्तार है। और फिर अंतिम श्लोक आता है पुरुषोत्तम यो माम एवं अमूढ़ो असमूढ़ जानाति सर्वेति भजते माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे ऐसे पुरुषोत्तम जानता है वो सारे भावनाओं के साथ मेरा भजन करता है, तब मुझ पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। तो ये 20 श्लोकों का छोटा सा अध्याय जिसमें जीव के दो प्रकार बताए, मुक्त जीव बद्ध जीव, संसार वृक्ष उससे छूटने का रास्ता, अपने को झूठे अहंकार से मुक्त करना, और फिर भगवान को सूर्य के रूप में देखने से लेकर हृदय में परमात्मा के रूप में देखना, और पुरुषोत्तम देख के उसका शरण लेकर भगवान की भक्ति करके परम आनंद को प्राप्त करना, पुरुषोत्तम योग यहाँ पूरा होकर होता है। हरि ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद् ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम 15वें अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो समय हम 15 मिनट हमने ज्यादा आगे बढ़ गया, और किसी का कोई प्रश्न कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। और फिर भी स्वामीनारायण इस सत्संग मंडल का फिर आभार एक बार कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से करते हैं कि आपने हमको सेवा का अवसर दिया। आगे भी आदान प्रदान आना जाना रहेगा। हम सारे आध्यात्मिक संस्थाएं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे और मानवता के कल्याण के तरफ चल रही हैं, तो सबको मिलजुल के चलने से हम आपस में संगठन से चलेंगे तो सबका भला होगा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।